हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। दो रास्ते थे तुम्हारे पास, ये जानते हुए कि इस शादी से तुम्हें सिर्फ दर्द, अपमान, धिक्कार मिलेगी। मुझसे शादी करके अपने परिवार को मेरी कैद से आज़ाद करवा लो, या फिर मेरी बात को न मानो और यहाँ से चली जाओ, पर फिर अपने परिवार की लाश देखने के लिए भी तैयार रहना। या अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा सकती हो, जिसका मतलब होगा कि तुम अपने परिवार को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। या फिर अपने परिवार को एक नई ज़िंदगी देने के एवज़ में खुद को मौत से बदतर ज़िंदगी जीने के लिए तैयार कर लो। फ़ैसला तुम्हारा है और तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। अगर इन 5 मिनट के अंदर तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कही और यहाँ से जाने के लिए कदम आगे बढ़ाया, तो मेरा बस एक फ़ोन कॉल और तुम्हारे परिवार का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। उसके बाद तुम दुनिया में कहीं भी क्यों ना छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, और उसके बाद तुम्हारा जो हश्र होगा तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकोगी। अर्णव के चेहरे पर गुस्से के साथ नफ़रत के भाव भी उभर आए थे। अब वो अपने फ़ोन को अपने हाथों में घुमाते हुए धृति को घूर रहा था। वहीं धृति के पैर वहां जम से गए थे। कानों में अर्णव की कही बातें गूंज रही थीं और आंखों के आगे अपने परिवार का चेहरा घूम रहा था। अर्णव की निगाहें उसी पर टिकी थीं और अब चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शायद वो पहले से ही धृति का फ़ैसला जानता था, इसलिए एकदम शांत था। पर बाहर से जितना शांत वो नज़र आ रहा था, अंदर से उतना ही ज़्यादा अशांत था। धृति कुछ पल परेशान सी सब बातों के बारे में सोचती रही। अपनी बेबसी पर आज उसको तरस आ रहा था। आंखें आंसुओं से लबालब भर चुकी थीं। उसने कुछ देर सोचने के बाद अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछ लिया और उसकी ओर पलटते हुए बोली, अगर मैं आपसे शादी करती हूँ तो आप मेरी फ़ैमिली को छोड़ देंगे? दोबारा अपने मकसद को पूरा करने के लिए या मुझे मजबूर करने के लिए उन्हें बीच में तो नहीं लाएंगे? एक बार मेरी तुमसे शादी हो जाए, उसके बाद मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं। धृति ने उसकी बात सुनी। बहुत हिम्मत के साथ उसने आगे कहा, ठीक है, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। आप जब और जहाँ कहेंगे मैं आपसे शादी कर लूँगी, बस आप मेरी फ़ैमिली को छोड़ दीजिए। आखिर में धृति उसके आगे झुकी गई। ये देखकर अर्णव के लबों पर तिरछी मुस्कान फैल गई। उसने उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए इंटेंस निगाहों से उसे देखते हुए कहा, गुड, इंटेलिजेंट लगती हो तुम, बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है तुमने। अब जब डिसाइड कर ही लिया है तो देर किस बात की, शादी अभी और इसी वक्त होगी, और एक बार शादी सम्पन्न हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारे परिवार को आज़ाद कर दूंगा। उसकी बात सुनकर धृति एक बार फिर चौंक गई। वो आंखें फाड़े उसे देखते हुए हैरानी से बोली, अभी शादी होगी, इसका क्या मतलब? अर्णव उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसने तिरछी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए चुटकी बजाई और इसके साथ ही वो जगह रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी। जैसे ही धृति की नज़र सामने पड़ी, उसके होश उड़ गए। लिविंग रूम के बड़े से हॉल के बीचों बीच फूलों से सजा खूबसूरत सा मंडप बनाया हुआ था, जहां शादी के लिए आवश्यक सभी सामग्री पहले से मौजूद थी। वहां पंडित जी और दुल्हा दुल्हन के बैठने के लिए आसन भी लगे थे और बीच में हवन कुंड बना हुआ था, जिसमें अभी आग नहीं जल रही थी। धृति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अविश्वास भरी नज़रों से अर्णव को देखा। उसने बिना किसी भाव के सवाल किया, शादी अभी और इसी वक्त होगी, अगर अपने परिवार की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी हर बात खामोशी से माननी होगी, क्योंकि कोई मेरी बात का विरोध करे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसने सख्त भाव से उसे चेताया। शादी शब्द सुनकर धृति की आंखों में नमी उतर गई। उसने नम आंखों से उस मंडप को देखा जहां उसकी बर्बादी की कहानी लिखी जानी थी, जिसे इतनी खूबसूरती से सजाया ही इसलिए गया था ताकि वहां उसकी किस्मत को दुखों, तकलीफों और अपमान से जोड़ा जाए। फिर उसने खुद को संभालते हुए सख्त भाव से कहा, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। आप अभी इसी वक्त शादी करना चाहते हैं तो मैं अभी ही मंडप पर बैठ जाऊँगी, पर उससे पहले आपको मेरी फ़ैमिली को अपनी कैद से आज़ाद करना होगा। जो इंसान मुझे इस ज़बरदस्ती की शादी के लिए राज़ी करने के लिए इस हद तक गिर सकता है कि एक लड़की के परिवार को निशाना बनाए, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर अपने मकसद में पूरा करना चाहे, मैं उस शख्स पर विश्वास कैसे कर लूँ कि अपने मकसद के पूरे होने के बाद वो अपना वादा निभाएगा? मुझे आप पर विश्वास नहीं। नहीं, क्या पता आप मुझसे शादी करने के बाद अपनी बात से मुकर जाएं और मेरे परिवार को अपनी कैद से आज़ाद न करें, ताकि आगे भी आप उन्हें निशाने पर रखकर मुझसे अपनी बात मनवा सकें। इसलिए पहले आप मेरी फैमिली को आज़ाद कीजिए। जब मैं उन्हें सही सलामत अपने घर पर देख लूँगी, तो उसके बाद आप जो और जैसा कहेंगे, मैं बिना कोई सवाल किए आपकी हर बात मान लूँगी। उसकी बातें सुनकर अर्णव की मुट्ठी गुस्से से कस गई। उसने जबड़े भींचते हुए बेहद गुस्से में पर धीमी आवाज में कहा, इस वक्त तुम्हारे पास मुझ पर विश्वास करने और खामोशी से मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं, इसलिए अपना ये गुमान मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जिसके खुद की फितरत में धोखा देना शामिल हो, जिसके खून में छल कपट धोखेबाजी और चालाकी बहती हो, उसके मुँह से विश्वास की बातें सुनना कुछ ठीक नहीं लगता। तुम भरोसा करो या ना करो, पर मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूँ। अपने दिए वादे से मुकरना मेरी नहीं, तुम्हारी फितरत है। मेरी जबान से एक बार जो बात निकल गई, वो पत्थर की लकीर होती है। मैंने कह दिया कि शादी के पूरे होते ही तुम्हारा परिवार सही सलामत तुम्हारे घर पहुँच जाएगा, तो मतलब पहुँच जाएगा। अब अगर तुमने एक और शब्द अपने जबान से निकाला, तो मुझे अपना फैसला बदलने में वक्त नहीं लगेगा। इसलिए अगर अपने परिवार को जिंदा देखना चाहती हो, तो अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप जो कहा जाए वो करो। अर्णव का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। इतने इल्ज़ाम लगाए उसने धृति पर, लेकिन उसे ये तक समझ नहीं आया कि आखिर उसने क्या किया है, उसके किस गुनाह की सज़ा मिल रही है उसे। कोई और रास्ता था ही कहाँ उसके पास, सिवाय खामोशी से अर्णव की बात मानने के और ना चाहते हुए भी इस जबरदस्ती के रिश्ते में बंधने के, जिससे उसे सिर्फ तकलीफ ही मिलने वाली थी। उसने अपना सर झुकाकर खामोश स्वीकृति दे दी। अर्णव ने घृणा भरी नज़र उस पर डाली, फिर तेज आवाज में चीखा, माधुरी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि धृति का पूरा बदन कांप उठा। वहीं अगले ही पल किचन से एक 25 साल की लड़की भागते हुए वहां पहुंची और अर्णव के आगे आकर सर झुकाकर बोली, जी सर। इन्हें कमरे में लेकर जाओ और अच्छे से दुल्हन की तरह तैयार करके लेकर आओ। याद रहे, अगर कहीं कोई कमी रह गई तो तुम्हें कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। अर्णव ने धृति की ओर इशारा किया और उसे लेकर जाने का कहने के साथ ही उसे भी धमकी दे डाली। उसने तुरंत हाँ में सर हिलाकर धृति को देखकर उसे चलने को कहा। धृति खामोश सी धीमे कदमों से उसके पीछे चली गई। उसके वहां से जाते ही अर्णव ने किसी को फोन किया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। करीब एक घंटे बाद अर्णव सीढ़ियों से नीचे उतरा। गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडर्ड शेरवानी, सर पर गुलाबी रंग का साफा बांधा हुआ था, जिस पर गोल्डन कलर में मोर डिजाइन वाला ब्रोच लगा हुआ था। कंधे पर राजसी स्टाइल में डाला हल्के गुलाबी रंग का दुपट्टा, गले में मोतियों की चार लड़ी वाली माला पहनी हुई थी, पैरों में ट्रेडिशनल जूती। चेहरे पर सख्त भाव, गहरी काली आंखों में बेहिसाब गुस्सा और नफरत कैद थी, खड़ी नाक जिस पर गुस्सा सवार था, पतले पतले गुलाबी लब जो गुस्से में भींजे हुए थे। हैंडसम तो था ही, पर चेहरे पर मौजूद हल्की बियर्ड्स और उसके सख्त भाव उसे किलर लुक दे रहे थे। 6 फुट हाइट, जिम बनाई मस्कुलर बॉडी, जिसके उभार उस फिटेड शेरवानी में साफ नजर आ रहे थे। कमाल की पर्सनालिटी थी उसकी, जो एक बार देख ले सीधे उसके दिल में उतर आए। चेहरे पर झलकता रौब उसकी पर्सनालिटी का अहम हिस्सा था, जो उसे सबसे जुदा बना रहा था। दूध सा गोरा चेहरा जो गुस्से में हल्का लाल हो रखा था, बेहद दिलकश लग रहा था वो, और दुल्हे के लिबास में तो और ज्यादा हॉट लग रहा था। वो बड़े ही रौब से चलते हुए नीचे आया तो मंडप के पास उसी की उम्र का एक लड़का खड़ा था। देखने में काफी हैंडसम था और एकदम फॉर्मल लुक में वो अलग ही नजर आ रहा था। वो पंडित जी से कुछ बात कर रहा था, तभी अर्णव उसके पास पहुंचा तो उस लड़के ने निगाहें उसकी ओर घुमाई, फिर उसे लेकर साइड में आ गया। अर्णव बिना किसी भाव के उसके साथ चला आया। दूसरे लड़के ने अब उसे देखते हुए गंभीरता से सवाल किया, अर्णव तू शोर है ना कि तू ये करना चाहता है? मतलब देख यार, मैं समझता हूँ कि तू उसे तकलीफ देना चाहता है, उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, बदला लेना चाहता है उससे, पर उसके तो और भी कई तरीके हैं ना, फिर तू क्यों उससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? देख यार, मैं तेरी फीलिंग्स को समझता हूँ और तेरे हर फैसले में तेरे साथ खड़ा हूँ, पर यार शादी जिंदगी का एक बेहद अहम फैसला होता है, उसको यूं गुस्से में या बदले के लिए लेना ठीक नहीं है। तू उससे शादी उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए करना चाहता है, पर उसके साथ साथ तेरी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। नफरत से जुड़ा ये रिश्ता अगर उसे दर्द और तकलीफ देगा, तो तुझे भी जिंदगी भर का दर्द ही मिलेगा इस रिश्ते में बंधकर।
एक बार फिर सोच ले यार, हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे उससे बदला लेने का। तुझे उसके लिए उस धोखेबाज लड़की से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़का काफी परेशान लग रहा था। अर्नव खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। उसके एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखकर ये बता पाना बेहद मुश्किल था कि आखिर उसके दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है। वो लड़का खामोश हुआ तो कुछ पल वहां गहरी खामोशी पसरी रही। फिर अर्नव ने भावहीन कठोर लहजे में कहना शुरू किया, ठीक कहा तूने, उसे दर्द देने के और भी तरीके हैं, पर जो तकलीफ मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने के बाद दूंगा उसकी बात ही अलग होगी। हर पल उसे उसके गुनाहों का एहसास दिलाऊंगा। उसने जो किया उसके बाद उसे चैन से जीने का कोई हक नहीं है, और ये रिश्ता उसकी जिंदगी से सुख चैन और खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए छीन लेगा। बहुत शौक से उसे अपने हुस्न के जाल में मासूम लड़कों को फंसाकर उनके दिल और जज्बातों के साथ खेलने का। एक बार शादी हो जाए उसके बाद मैं उसकी जिंदगी के साथ ऐसा खेल खेलूंगा कि वो उस पल को कोसेगी जब वो मेरी जिंदगी में आई थी। अमीर लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका इस्तेमाल करना और जरूरत पूरी होने के बाद उन्हें तड़पाता छोड़ देना फितरत है उसकी। अब मैं उसे एहसास दिलाऊंगा कि तड़पना क्या होता है, कितनी तकलीफ होती है जब कोई अपनी जिंदगी को अपने मतलब के लिए कंट्रोल करता है और अंत में आपको मरने के लिए अकेला छोड़ देता है। तन्हाई कैसी टीस पैदा करती है दिल में, इसका एहसास अब उसे होगा।